विचार चल रहा है कठोपनिषद में, द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली, द्वितीय मंत्र का विचार संपन्न हुआ है। तो जो अपने से बाह्य अनात्म पदार्थ में सुख को ढूंढता है, सुख का साधन समझता है सांसारिक पदार्थ को, इसलिए जो बहिर्मुखी होता है, अविवेकी अज्ञानी को बालक कहा गया। उसको ना समझ समझना चाहिए, ना समझ इसलिए कहा जाएगा कि जिस अनात्म पदार्थ को सुख रूप समझता है, सुख का साधन समझता है, वही अनात्म पदार्थ अपने को दुखी करता है, दुख का साधन बन जाता है। दूसरी बात यह भी है कि संसार में हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, पराधीन होना कोई भी नहीं चाहता है। और पराधीनता में सुख जागृत तो क्या, सपना अवस्था में भी आशा नहीं करनी चाहिए। तो विचार करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि जिसको अनात्म पदार्थ को हम सुख का साधन समझते हैं, जन्म से समझते आ रहे हैं, क्या उसी से हमारा बंधन दृढ़ होता जा रहा है कि बंधन से हम मुक्त होते जा रहे हैं। विचार करने पर यह निर्णय होता है, बंधन तो दृढ़ होता जा रहा है, ना बंधन से मुक्त हो रहे हैं, ना बंधन शिथिल हो रहा है। बालक जब जन्म लेता है तो उस समय केवल स्वशरीर में मम बुद्धि करता है, और जितना बड़ा होते जाता है तो बंधन और बढ़ता जाता है। आत्मा अनात्मा की जो ग्रंथि है और दृढ़ होती जाती है। पहले अपने शरीर में मोह था, ममता थी, बड़ा हो गया तो फिर माता पिता में हो गया। तो जहां पर मम बुद्धि होती है उससे अतिरिक्त में तव बुद्धि हो जाएगी, और मम और तव यही तो ग्रंथि है। तो माता पिता में देखो एक बंधन बढ़ गया, आज धन कमाया तो धन के प्रति मम बुद्धि हो गई, घर में पत्नी आ गई तो पत्नी मां बुद्धि हो गई, फिर पुत्र में हो गया देखो, फिर जो है पुत्र आदि ममत्व हो गया। तो यह निर्णय होता है विवेकी के लिए। तो सांसारिक पदार्थ से पराधीनता होती है, स्वतंत्रता नहीं होती है, ग्रंथि दृढ़ होती है, नाक की ग्रंथि में शैथिल्य होता है। मान लो कि अभी भगवान विष्णु भी आ जावे विमान लेकर के, चलो भाई विष्णु लोग में बैकुंठ में, तो कोई तो तैयार नहीं होगा बैठने के लिए। हमारा काम अभी थोड़ा बाकी है, घर से आते हैं। तो सांसारिक कार्य कभी भी किसी का पूरा नहीं होता है, इसलिए यहां पर श्रुति कहती है और नेत्र भी कहती है कि हे अज्ञानी अविवेकी रूपी बालक, ना समझ रूपी बालक, तुमको सचेत होना चाहिए कि काहे के लिए मनुष्य जन्म मिला है। केवल ना समझी में ही सारा जीवन नहीं जाना चाहिए। यह चेत अवैधित अथ सत्यम अस्ति। तो जीते जी ही जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया अथवा साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होता हो, प्रयास करता हो, तो समझना चाहिए कि उनका जन्म सार्थक हो गया। इसी जन्म में मोक्ष नहीं हुआ, जिस क्लास तक उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, अगले जन्म में आगे क्लास में प्रवेश करेगा। जैसे रमण महर्षि केवल एक ही क्लास का बाकी था, केवल निधिध्यासन ही बाकी था, श्रवण मनन कर लिया था। इसलिए ये नहीं समझना है कि भी देखो उसने वेदांत का श्रवण नहीं किया, गुरु के पास नहीं गया, है ना, कर्म उपासना नहीं किया और ज्ञान कैसे हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो कहना ये है कि श्रुति सचेत करती है बालक के लिए, अज्ञानी के लिए, कि परमात्मा का साक्षात्कार के लिए ही यह मनुष्य जन्म मिला है, अन्य कार्य के लिए नहीं है। और जिसने जीते जी ही पशुभाव को प्राप्त कर लिया, मरने के बाद तो पशु बनेगा ही, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब जिसने जीते जी ही देवत्व को प्राप्त कर लिया, मरने के बाद तो देवता बनेगा ही। इसलिए तो हम प्रयास किसमें करते हैं, किसका आश्रय लेते हैं, परमात्मा का आश्रय ले रहे हैं कि परमात्मा की सेना है? ये संसार जो है ना परमात्मा की सेना है, तो परमात्मा की सेना से आप युद्ध को नहीं जीत सकते, अविद्या काम कर्म को नहीं जीत सकते। परमात्मा का यदि आश्रय लेते हैं, परमात्मा का आश्रित होने पर जो बल प्राप्त होता है, उसी से ही अविद्या काम कर्म रूपी शत्रु पराजित होते हैं, अन्य से नहीं होते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं जो बहिर्मुखी ना हो करके अंतर्मुखी हो गया, परमात्मा का बल को प्राप्त करता है, वो हो गया धीर, वही धीर बन सकता है और वही परंपरा से गुरु के शरण में जाकर के ज्ञान को प्राप्त करके साक्षात अमृतत्व, शाश्वत अमृतत्व को प्राप्त करता है। यह न प्रार्थयन्ते, जिसको परोक्ष ज्ञान भी हो गया हो कि सांसारिक पदार्थ से हम शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसी से हमारा बंधन दृढ़ी होता जाता है, बंधन की शिथिलता नहीं होती है, ऐसा परोक्ष ज्ञान होने से भी संसार के प्रति वो आसक्त नहीं होता है, किसी प्रकार की ऐषणा नहीं होती है। इसलिए भगवान भाष्यकर लिखा है, च चाहे पुत्रेषणा हो, चाहे लोकेषणा हो, चाहे वित्तेषणा हो, ये त्रिविध ऐषणा है ना, ये श्रवण मनन निध्यासन, ये देखो श्रेष्ठ साधन है संसार में, यही श्रवण मनन निधिध्यासन, इसको कहते अंतरंग साधन, बाकी जितने भी है बहिरंग साधन। तो अंतरंग साधन का अधिकारी ऐषणा से लिप्त हुआ हो, ऐषणा में पड़ा हुआ व्यक्ति अधिकारी नहीं बन सकता है। तो यहां तक बात हुई चर्चा। तो कहते हैं आगे, तो जिसका परोक्ष ज्ञान होने मात्र से सांसारिक बल को प्राप्त नहीं करता है, अपितु परमात्मा के बल को प्राप्त करता है, तो फिर ऐसा पदार्थ कौन है जिसका स्वरूप आनंद है? तो कहते हैं यही देखो, यही आनंद स्वरूप है। ये तृतीय मंत्र में कहते हैं, ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनात् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते। एतद् वैतत् प्रथम अध्याय में यह जिज्ञासा थी नचिकेता को, नचिकेता से उपलक्षित कोई भी साधक हो, जिज्ञासा ही होती है, क्योंकि माया का खेल ऐसा है कि जो प्रत्यक्ष दिखता है ना, उसी को ही अज्ञानी प्रमाण मान लेता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई भी और प्रमाण नहीं है ऐसा मान लेते हैं नास्तिक व्यक्ति। तो वाचस्पति मिश्रा जी कहते हैं, केवल तुम प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हो, अनुमान आदि को प्रमाण नहीं मानते हो, शब्दों को प्रमाण नहीं मानते हो, तुम्हारा तो व्यवहार भी नहीं चलेगा। एक पशु भी अनुमान प्रमाण को मानता है कि नहीं मानता भी? पशु को चारा दिखा दीजिए, आपके पीछे पीछे आ जाएगा, और डंडा दिखाई तो अनुमान है कि नहीं? पहले मार खाया है, वो चार खाया है, चारा को खाया है, वो जो संस्कार पड़ा है ना, संस्कार, वो संस्कार को लेकर के है ना, तो इष्ट साधनता प्रकार ज्ञान बोलते हैं नए लोग, ये वस्तु मेरे लिए इष्ट है और ये वस्तु मेरे लिए अनिष्ट है, ये जो ज्ञान हुआ है ना पहले से, इस ज्ञान के आधार पर पशु भी अनुमान कर लेता है। अनुमान प्रमाण में पशु कमजोर नहीं है, देखो तो मनुष्य से भी आगे है ना? और तार्किक लोग जो कहते हैं, देखो हमारी बुद्धि बहुत कुशल है, तुम्हारी बुद्धि क्या कुशल, पशु से भी तुम कमजोर हो, नहीं है क्या? देखो ये आजकल जो है वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये कोई जो कुत्ता होता है ना, कुत्ते को पहले से ज्ञान हो जाता है, भूखा माने वाला है, तो अनुमान किया कि नहीं? देखो तो किस प्रमाण से जाना, अनुमान प्रमाण से जाना है ना? तो कहना क्या है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानता है, इससे अतिरिक्त कोई भी प्रमाण नहीं है, तो व्यवहार भी नहीं कर सकते है ना? इसलिए अंतर्गतत्व शब्द प्रमाण को माना जाता है। तो एक बार जो है कहीं शास्त्रार्थ हुआ, बहुत पहले की बात है, कि जो रजनीश ओशो भी गए थे वहां पर, तो किसी प्रसंग को लेकर के रजनीश ने कहा, तो बड़े तार्किक थे भाई, तो उन्होंने कहा कि देखो ये मेरी अनुभूति है, मेरी अनुभूति है भाई, इसलिए जिस विषय में अनुभूति हो रही है उसी को ही प्रमाण मानना चाहिए। तो हमारे हरिद्वार के एक महात्मा जी थे, भारतीय विद्यालय के बड़े अच्छे महात्मा थे, वो भी गए थे, तो उन्होंने कहा भाई तुमको अनुभूति हो रही है, ये अनुभूति सही है, इसमें क्या प्रमाण है? तुम्हारी अनुभूति सही है कि नहीं है ये कैसे जानेंगे? भाई किसी को देखो, रस्सी में रस्सी भी दिखती है, तो रस्सी में सर्प भी दिखता है, किसी को माला भी दिखेगी, किसी को दंड भी दिखाई देगा, तो सबकी अनुभूति है कि नहीं? केवल अनुभूति हो रही है इसलिए प्रमाण मानेंगे, ये तो मूर्खता है। हाँ, एक शब्द प्रमाण को, शास्त्र प्रमाण को आधार मान करके यदि आप अनुमान करते हैं, शास्त्र कह रहा है कि यह तो वायु माने बताना जानते, तो इस शास्त्र के आधार पर आप अनुमान कर सकते हैं। जगत सकम कार्यत्वाद घटवत ये कह सकते हैं। और हमारी अनुभूति जिसमें हो रही है उसी को ही प्रमाण मानेंगे, और जिस विषय की अनुभूति नहीं हो रही है उसमें कोई प्रमाण नहीं है, ये आप नहीं कह सकते। इसलिए हमारी सनातन परंपरा में, हमारी वैदिक परंपरा में यही प्रक्रिया होती है। पहले भी आप लोगों को बताया था कि शास्त्र का उपदेश, गुरु का उपदेश, तदनुसार अपनी अनुभूति, तीनों का यदि मिलान हो जावे, तीनों का विषय यदि एक हो जावे, तब उस ज्ञान को प्रामाणिक माना जाता है। इसलिए गीता में क्या है, इदम परंपरा प्राप्तम कहा कि नहीं भी? कि जो ज्ञान है परंपरा से प्राप्त होता है, जो परंपरा से प्राप्त नहीं है उसको ज्ञान वास्तविक नहीं कहा जाता है। इसलिए साधक का साधकत्व इसी में है। अभी आपको वर्तमान में अनुभव में आता हो या ना आता हो, जैसे पाप पुण्य को आपने नहीं देखा है कि नहीं? पाप पुण्य किसने देखा? नहीं देखा आपने। हाँ, शास्त्र कह रहा है, इसलिए आप जैसे मान लेते हैं कि पाप पुण्य है ना? अच्छा, विचार करेंगे शास्त्र के आधार पर आपको निश्चय हो जाएगा हाँ पाप पुण्य जरूर है। भाई पाप पुण्य यदि नहीं होता है तो एक माता के गर्भ में एक बालक स्वस्थ निकलता है और एक बालक जन्म से रुग्ण हो जाता है, कैसे हो जाता है ना? एक कुत्ता जो है कोई सेठ के घर में बढ़िया बढ़िया खाता है पीता है, ऐसी कमरे में रहता है, उसके लिए सेपरेट नौकर रहता है, और एक कुत्ता गली में घूमता रहता है, पत्थर खाता है, मार खाता है, इसका क्या हेतु मानेंगे आप? पाप पुण्य मानेंगे कि नहीं? तो आप विचार कर लो, जब जन्म होता है शिशु का तो शिशु स्तनपान करता है, करता है कि नहीं? तो उनको कैसे ज्ञान हुआ भाई? इदम स्तन्यपानम मत अविष्ट साधनम, ये ज्ञान कैसे हुआ? तो पहले भी दुग्धपान किया है कि नहीं? तो पहले जन्म में जो दुग्धपान किया है उसका संस्कार पड़ा है ना, संस्कार पड़ा है ना? वो जो संस्कार पड़ा है, संस्कार के उद्बोधक सामग्री है स्तन्यपान। स्तन्यपान जो उद्बोधक सामग्री है उसको लेकर के स्मरण हो जाता है पूर्व का, इसलिए स्तन्यपान करता है ये, है ना? तो इसलिए भले ही आपको अभी निश्चय नहीं हो रहा हो शास्त्र के प्रतिपाद्य का विषय, फिर मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि परमात्मा है, पाप पुण्य जैसे है परमात्मा भी ऐसा है। इसलिए निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो रहा है तो आम बोलने से शरीर अवच्छिन्न चेतन ही आ जा रहा है, तो इसका मतलब निर्विशेष है ही नहीं, तो आपने कैसे निश्चय किया? निर्विशेष ब्रह्म भी है, निर्गुण निराकार भी है, और निर्गुण साकार भी है, और सगुण साकार भी है, तीनों प्रमाण है ना? ये वेदांत की प्रक्रिया होती है। यदि आपको अभी अनुभव होता हो या ना होता हो तो परोक्षतया मान लेना चाहिए आत्मा इत्येव उपलब्धव्य, आत्मा अस्ति इत्येव उपलब्धव्य, आत्मा है परमात्मा ऐसा मान लेना चाहिए, उसी को साक्षात्कार होता है। ये परंपरा है हमारी सनातन की। तो देखो यही जो ध्रीव अमृतत्व है ये परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए वेदांत सिद्धांत में तो परोक्ष रूप से ये पहले मान लेना चाहिए। तो जो ही सत है वही चित है और वही आनंद है। ये सच्चित आनंद एक ब्रह्म का स्वरूप लक्षण हो गया। और ये तो वायुमानी भूता ने जानते ही सब क्या हो गए, तटस्थ लक्षण हो गए, है ना। तो यहां पर स्वरूप लक्षण को बता रहे हैं। देखो तृतीय मंत्र में कहते हैं व्यक्ति को रूप दिखाई देता है, ये घड़ा जो है लाल है, ये घड़ा जो है काला है, है ना, कपड़ा लाल है काला है, तो किससे दिखाई दे रहा है, चक्षु से भाई, है ना। तो चक्षु तो करण है भाई, तो किसके लिए करण है, किस व्यक्ति के लिए, आत्मा के लिए करण है। तो देखने वाला जो जीवात्मा हो गया है ना, वो रूप दर्शन का कर्ता हो गया, देखने वाला। तो देखने वाला हो गया आत्मा, और दिखाई दे रहा दिखने देखने का साधन हो गया चक्षु, और जो दिखाई दे रहा है रूप हो गया दृश्य, है ना। तो जिस व्यक्ति को रूप दिखाई दिया उसी को रस का भी ज्ञान होता है, उसी को गंध का भी होता है, जितने भी दृश्य है। तो यहां पर विचार ये करना चाहिए, तो जो जानने वाला है ना, वो विशिष्ट है कि जो है सामान्य है, ये विचार करना चाहिए, है ना। जिसको रूप का ज्ञान हो रहा है वो निर्विशेष है कि सविशेष है। यदि सविशेष मानेंगे तो वेदांत का प्रतिपाद्य सविशेष हो गया, निर्विशेष तो हुआ नहीं है कि नहीं। तो सविशेष के ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति होने वाली नहीं है। तो सविशेष का ज्ञान, मैं देवदत्त हूं, मैं मनुष्य हूं, ये ब्राह्मण हूं, ये जो विशिष्ट चेतन का ज्ञान तो अनादिकाल से हो रहा है, तो उससे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। देखो श्रुति का ये तात्पर्य है। तो विचार करना चाहिए सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी पीछे का ना। तो बहिर्मुखी जब हो जाता है तो जैसे रूप दृश्य हो गया उसी प्रकार चक्षु भी दृश्य हो जाएगा, पकड़ में है ना। जिस समय आप रूप को देख रहे हैं उस समय चक्षु का भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं, हो रहा नहीं भैया। तो रूप जैसे दृश्य है तो उत्तम अधिकारी के लिए चक्षु भी दृश्य हो जाएगा, हो गया कि नहीं। हाँ, अहम घटम जानामी, है ना। तो जो जाना जा रहा है भाई वो कौन कौन हो गए, तो घट भी जाना जा रहा है, जाना जा रहा है कि नहीं। तो जो जाना जाता है उसको कहते हैं दृश्य, दृग विषयत्म दृश्यत्म, दृग का जो विषय होता है, साक्षी का जो विषय होता है उसको कहते हैं दृश्य, जड़ कह लो दृश्य कह लो परिच्छिन्न एक ही बात है ना। तो घट पट आदि और उसका जो रूप वो जैसे दृश्य जाना जाता है उसी प्रकार करण जो चक्षु है ना वो भी जाना जाता है। किससे दिख रहा है, चक्षु से। और किसके चक्षु, मेरी चक्षु, है ना। तो जिस चेतन से घट भाषित हो रहा है उसी चेतन से चक्षु बचे, ये देखो, है ना। तो रूप भी भाषित हो गया और आपका जो है चक्षुकरण वो भी भाषित हो गया ना। अच्छा, तो रूप का ज्ञान किसको हुआ भाई, रूप का जो ज्ञान हुआ है ना, रूप ज्ञानवान अहम, घट ज्ञानवान अहम, हो गया ना। देखो वो रूप का जो ज्ञान भी वो भी भाषित हो गया, मुझे रूप का ज्ञान हुआ, हो गया कि नहीं। तो किसका ज्ञान हुआ, अब रूप के ज्ञान को भी जान रहे हैं, पकड़ माया। ये देखो और सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि चलेगी, है ना। जैसे रूप भास रहा है उसी पे रूप का ज्ञान भी भास रहा है, हो गए कि नहीं। तो रूप में जैसे आपको संशय नहीं हो रहा है जिस समय ज्ञान हो रहा है, रूप का ज्ञान भी उसमें भी संशय नहीं होता है। आप रूप को देख रहे हैं, संशय है क्या, रूप है कि नहीं, संशय नहीं है, हो गया ना। तो रूप में जैसे संशय नहीं हो रहा है रूप के विषय में, रूप के ज्ञान के विषय में आपको भी संशय कहां हो रहा है। रूप का ज्ञान हुआ और रूप का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा सोचते हैं तो बताएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना, हो गया ना। तो जैसे सुख हुआ आपको है ना, तो संशय होता है क्या उस समय, आपको सुख हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा सोच लेते हैं। रसगुल्ला खाया आपको सुख की जो अनुभूति हुई, संशय नहीं होता तुरंत है ना। तो रसगुल्ले के रस में जैसे संशय नहीं होता है, रसगुल्ले रस का ज्ञान में भी आपको संशय नहीं होता है, हो गया कि नहीं। तीन बातें हो गई, रूप और रूप का जो कारण है चक्षु वो भी दृश्य हो गया, और रूप का जो ज्ञान है ना वो भी दृश्य हो गया कि नहीं हो गया, पकड़ में आया है ना। तो घट ज्ञान मुझे हुआ, रूप का ज्ञान मुझे हुआ, तो रूप भी दृश्य हो गया और रूप का ज्ञान भी दृश्य हो गया, हो गया कि नहीं, है ना। और देखो अहम घटम जानामि, अहम रक्त घटम जानामि, रक्त रूप हो गया, रूप भी दृश्य हो गया, घट भी दृश्य हो गया, और चक्षुषा घटम अहम जानामि, तो चक्षु भी दृश्य हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। और किसने जाना भाई, प्रमाता ना जाना, प्रमाता अगर अहम कह रहे कि नहीं, है ना। तो अहम अर्थ जो प्रमाता है विशिष्ट चेतन, वो भी भाषित होता है, हो गया कि नहीं। तो घट में जैसे संशय नहीं हो रहा है, घट ज्ञान में जैसे संशय नहीं हो रहा है, प्रमाता में भी संशय आपको, प्रमाता विशिष्ट हो गया। देखो इस बात को ध्यान दीजिए, अहम घटम जानामि, तो घट जिस चेतन से प्रकाशित होता है, घट ज्ञान भी जिस चेतन से प्रकाशित होता है, अहम अर्थ जो प्रमाता है ना वो भी भाषित हो जाता है, विशिष्ट चेतन में भाषित हो जाए, हो गया कि नहीं। तो जा फिर किससे प्रकाशित हो गया, वो साक्षी हो गया, हो गया कि नहीं। और वो जो साक्षी है ना वो निर्विशेष हो गया है, देखो है ना, अपने सबको हटा दिया, देखो सबको हटा दिया, यदि नहीं हटाएंगे तो आप विशिष्ट हो जाएंगे, आ गया ना। मन के साथ आपने तादात्म्य कर लिया, चक्षु इंद्रिय के साथ तादात्म्य कर लिया, तो आप प्रमाता हो गए, लेकिन विचार करेंगे भाई हमारा मन भी तो जाना जा रहा है, रूप का जो ज्ञान हो रहा है वो भी तो जाना जा रहा है ना। अपने से सब आपने सब कुछ निवर्तन कर दिया, तो आपका स्वरूप कैसा हो गया, ये इसी का नाम साक्षी है ना। फिर वो कैसे प्रकाशित होगा भाई, हाँ इसी का नाम क्या है, संप्रकाश है ना। उसका भान के लिए और किसी भान की जरूरत नहीं है ना। तो देखो घट ज्ञान को जिसने सत्ता दिया, हो गया ना, घट ज्ञान को जिसने सत्ता दिया, घट ज्ञान को प्रकाशित भी वही किया, इसलिए जिसका स्वरूप सत्ता है, सत है, उसका स्वरूप ज्ञान भी, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये स्वरूप लक्षण हो गए देखो है ना। इसलिए उसके प्रकाश के लिए जो सत चेतन है उसके प्रकाश के लिए और प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं होती है, यदि मानेंगे तो अनवस्था दोष हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हाँ अनवस्था दोष हो जाएगा। इसलिए जिस साक्षी के द्वारा ज्ञात घट प्रकाशित होता है, घट यदि है तो घटम अहम जानामि, तो किस घट का प्रकाश हो गया, ज्ञात घट, ज्ञात घट मतलब जानते हैं, तो घट के साथ साथ घट ज्ञान का ही प्रकाशित हो रहा है, उसको कहते हैं ज्ञात घट, घटम अहम जानामि है ना। केवल घट प्रकाशित नहीं हो रहा है, घट का ज्ञान, घटाकार वृत्ति, घटाकार वृत्ति रूपी जो ज्ञान है वो भी प्रकाशित हो जाता है, हो गया कि नहीं। और घट यदि नहीं है तो घटम अहम न जानामि, हाँ अज्ञात घट, इसको क्या बोलेंगे, हाँ। चाहे ज्ञात घट हो चाहे अज्ञात घट हो, एक ही चेतन से ही प्रकाशित होगा। इसलिए ज्ञाततया अज्ञाततया व सर्वम साक्षिभाष्य, चाहे घट ज्ञात हो चाहे घट अज्ञात, सबको वो साक्षी प्रकाशित करेगा। और साक्षी का प्रकाश के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, विचार करेंगे तो अनुभूति हो जाएगी, हो गई क्या? हाँ, इसीलिए परमाता च प्रमाणम च प्रमेयो प्रमेतिस्तथा यत प्रसादा सन्निध्यन्ते प्रसिद्धन्ते तो सिद्धो किम अपेक्षते। परमाता प्रमाण प्रमेय, ये देखो है ना, अहम घटम जानामि, अहम अर्थ हो गया प्रमाता, अविभाषित हो रहा है भाई, हो गया ना, ये चक्षु हो गई प्रमाण, प्रमाण 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 हो गई कि नहीं, अप्रमेय घटपटादि प्रमेय हो गया, प्रमेय अप्रमा को भी समझ लो घट का ज्ञान है ना, प्रमिति कह दिया ना आगे, प्रमिति घट का ज्ञान वृत्ति, ये सब के सब जो है उसी के प्रकाश से, यत प्रसादात प्रसिद्धन्ति, उसके प्रसाद से, प्रसाद मतलब प्रकाश, हो गया कि नहीं, प्रसाद जो ग्रहण करते हैं कि नहीं भोग लगा करके, और प्रसाद क्या है, ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रसाद, प्रसाद वो ज्ञान रूपी प्रसाद हमको प्राप्त हो रहा है, हो गया कि ये जो है ये भावना की, भावना तो क्या है ना, भक्ति में भावना की प्रधानता है, हो गया ना, और ज्ञान में भी विचार की प्रधानता है, ज्ञान में विचार की प्रधानता है, विचार यदि नहीं हो रहा तो ज्ञान नहीं होगा, सुनते रहेंगे जीवन भर, पुण्य तो होगा लेकिन विचार के बिना ज्ञान नहीं होता है, हो गया ना, इसलिए श्रवण के साथ 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 में क्या करना चाहिए, विचार भी करते हैं भाई, हम हमको अनुभव आ रहा है कि नहीं, ऐसे की ऐसे ही केवल रट रहे हैं, विचार करना चाहिए कि नहीं, है ना, हाँ भाई आपने रट लिया सर्वम कलेदम ब्रह्म, राम अहम अस्मि ब्रह्म, रट तो लिया भाई, ब्रह्म कहने से हाँ किसको ले रहे हैं भैया, अहम अर्थ से आप किसको ले रहे हैं, विशिष्ट को ले रहे है कि जो है निर्विशेष को ले रहे है, तो निर्विशेष को समझ करके यदि ब्रह्म के साथ एकत्व करते तब तो ठीक है, है ना, और आम हम बोल रहे हैं और शरीर के साथ अध्यात्म हो रहा है, नहीं जा रहा है, तो ज्ञान कहां से होगा, विचार करना चाहिए। तो देखो भाई, तो ये बात यहां पर कहते हैं, ये ना जिस साक्षी चेतन के द्वारा ये रूप आदि जितने भी विषय है वो जाने जा रहा है, जाना जा रहा है, वो अपना स्वरूप है, उसका पारमार्थिक स्वरूप है और पारमार्थिक आनंद है ना, तो इसीलिए उस स्वरूप में ही आनंद का अन्वेषण करना चाहिए। हे नचिकेता, जिसके बारे में तुमको संशय हो रहा था, जिज्ञासा हो रही थी कि शरीर छूटने के बाद आत्म तत्व है कि नहीं है, यही आत्म तत्व है, देखो इसलिए जमराज जी कहते हैं एतेनेव विजानाति, इस साक्षी चैतन्य के द्वारा ही सारा जगत जाना जा रहा है, इसलिए उस साक्षी चेतन से कोई भी अज्ञात नहीं रहता है, जो भी जाना जाएगा साक्षी चेतन से ही जाना जाएगा, जड़ से नहीं जाना जाएगा, हो गया ना, ये चैतन्य किसी का धर्म नहीं है, तो चार भाग लोग बोलते हैं भाई ये चैतन्य क्या है, ये पृथ्वी जल तेज वायु ये चारों मिल गए तो चैतन्य आ गया, ये बोलते हैं चार भाग लोग, तो चैतन्य को आत्मा का स्वरूप मानने की क्या जरूरत है, हाँ दृष्टांत देते हैं ना भाई, मान लीजिए पान खाते हैं, पान खाते हैं हाँ, तो उसमें क्या पान का पत्ता रहता है और कत्था और चूना, और तीनों चीज मिल गए मुंह में डाल दिया तो लार आ जाता है कि नहीं, तो लार किसका धर्म है, तीनों का धर्म है कि नहीं, हाँ तीनों के मिश्रित का फल ही क्या है, लार, लाल हो जाता है कि नहीं, तो इसी प्रकार से चारों भूत मिल गए तो चैतन्य आ गया, आकाश को नहीं मानता है, पृथ्वी जल तेज वायु ये जब मिल गए माता के गर्भ में तो जो चैतन्य आ गया और क्या है, हाँ तो ये विचार का कोई आधार ही नहीं है, ना कोई शास्त्र का आधार है ना कोई अनुभूति है, है ना। तो हमारा शास्त्र क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, मतलब ये घट ज्ञान पट ज्ञान ऐसा विज्ञान ही समझना है, है ना। तो जिस चेतन से घट का ज्ञान भी प्रकाशित हुआ उसी का नाम क्या है, विज्ञान, है ना। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, विशिष्टम मतलब निर्विशेष हो गया ना, अबाधित, जिससे पट ज्ञान हो गया था घट ज्ञान नहीं, और जिसमें घट ज्ञान हो रहा था पट ज्ञान नहीं, जिसमें जागृत का ज्ञान हो रहा था सपना का ज्ञान नहीं, और सपनों में गए तो सपनों का ज्ञान है जागृत का ज्ञान नहीं। ये जितने भी विशिष्ट ज्ञान है व्यवचरित ज्ञान है, व्यवचरित, लेकिन स्वप्न को जानने वाला जो चेतन है, जागृत को जानने वाला जो चेतन है, वो कैसा है, अबाधित अव्यविचरित। इसलिए शास्त्र जिसको चेतन बोलता है, व्यवहार में जिसको चेतन बोलते है वो चेतन नहीं हो गया ना, और शास्त्र जिसको आनंद बोलता है, व्यवहार में जिसको आनंद बोलते है वो नहीं। यदि उसी को यदि आनंद माना जाएगा तो ज्ञात का ज्ञापक हो गया, अज्ञात का ज्ञापक नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए शास्त्र का शास्त्रत्व तो क्या है, अज्ञात ज्ञापकत्वम शास्त्रत्व, ज्ञात का ज्ञापन नहीं करता हमारा शास्त्र, हो गया ना। इसलिए संसार की बात नहीं करता है, तो जहां पर संसार की चर्चा होती है ना, है ना, उसका कुछ अलग ही प्रयोजन होता है। हाँ, जिस कथा कहानी होती है उपनिषद में कथा कहानी आती है, तो कथा कहानी का प्रयोजन कथा कहानी में नहीं रहता है, भाई इंद्रियों में लड़ाई हो गई, इसका तात्पर्य लड़े में नहीं है, है ना। ये सब समझ लेना चाहिए, जहां जहां पर कहानी आती है समझ लेना चाहिए। तो जो लोग चार भाग लोग जो है, हैं, चार भूतों का धर्म को ही चैतन्य मानते हैं, कहते ऐसा नहीं हो सकता है, है ना। जैसे देखो घट का धर्म हो गया रूप, घट का धर्म हो गया रूप, उस रूप के द्वारा किसी का प्रकाश नहीं होता है, है ना। रूप जैसे घट का धर्म है, वो उससे किसी का प्रकाश होता नहीं है। इसी प्रकार चैतन्य यदि भूतों का धर्म मानेंगे, रूप जैसे घट भूतों का पृथ्वी का धर्म है, तो धर्म होने के कारण वो जड़ हो जाएगा। कोई भी धर्म जड़ी होता है और कोई भी धर्म अनात्मा होता है, ठीक है। सत्य चैतन्य आनंद ही आत्मा का धर्म नहीं है, अभी तो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा अलग है चैतन्य अलग है ऐसा नहीं होता है। चैतन्य आत्मा को छोड़कर कभी रह नहीं सकता है। ये तार्किक लोग जो बोलते हैं, भाई देखो मन का संबंध हो जाता है तो आत्मा में चैतन्य हो जाता है, ये तार्किक लोगों का सिद्धांत है। विचार करने पर ऐसा नहीं बनता है, है? क्यों नहीं बनता भाई, सुषुप्ति में जाते हैं तो मन का कोई संबंध ही नहीं है। मन का संबंध मानेंगे तो जागृत मानना पड़ेगा, नहीं तो सपना मानना पड़ेगा। आगे समझ में, तो आत्मा में मन का संबंध नहीं होता सुषुप्ति में, फिर भी आत्मा चेतन है। तो चैतन्य की अनुभूति है कि नहीं, यदि नहीं होती तो उठने के बाद स्मरण कैसे हो रहा है, आम सुखम अस्वापम, बड़े सुख से सोया भाई, भान हुआ कि नहीं हुआ, किसका भान हुआ, आत्मा का भान हुआ भाई, किससे हुआ, अपने से हुआ, किससे होगा, ना मन से हो रहा है, ना जो सूर्य का प्रकाश है, ना जो है बल्ब का प्रकाश है, उसी का नाम क्या है, स्वप्रकाश है ना। तो देख लो भाई, इसलिए हम लोग जो विचार करते हैं सनातन परंपरा में, हमारा आधार तो शास्त्र है, शास्त्र, शास्त्र के आधार पर विचार करना चाहिए। देखो हे नचिकेता किमत्र परिशिष्यते, कोई भी अवशिष्ट नहीं रहता है जो कि आत्मा से अतिरिक्त और किसी से प्रकाशित होता हो। इसलिए जो भी प्रकाशित होगा इस साक्षी चेतन से ही प्रकाशित होगा। इसलिए हे नचिकेता एतद् वै तत्, तुम्हारा जो जिज्ञासित पदार्थ आत्म तत्व है कि नहीं, तो कहते यही आत्म तत्व है जो स्वयं प्रकाश आत्मा है। अच्छा, तो ये तो भाई व्यष्टि रूप से बता दिया, रूप का प्रकाशक, रस का प्रकाशक, अभी समष्टि रूप से बताते हैं। देखो जागृत में जितने ही पदार्थ है, स्वप्न में जितने पदार्थ है, उसी आत्मा से प्रकाशित होते हैं। तो आत्मा से प्रकाशित होते हैं तो ऐसा जान लिया तो क्या हुआ, वही आत्मा अपना स्वरूप है। ओके की तो गड़बड़ी कहां पर होती है हम लोगों की, ये शास्त्र कह रहा है बस, है ना, ये शास्त्र प्रतिपाद्य अपना ही स्वरूप है, ये अनुभव करना चाहिए। आप देखिए भाई चतुर्थ मंत्र में देखो, श्रुति भगवती जो माता है ना, इनको आलस्य कभी नहीं आता है, जो हम लोगों को आलस्य आ जाता है ना। श्रुति को कभी भी माता को जैसे आलस्य नहीं आता है, बच्चे को आलस्य आ जाता है, इसी प्रकार भगवती श्रुति को है ना आलस्य कभी नहीं आता है। इसलिए जब तक अपने स्वरूप में नहीं जग जाता है बालक, तब तक उपदेश करती रहती है। इसलिए मंत्राणाम न जामिता अस्ति कहते ना भगवान वासुदेव, मंत्रों में श्रुति में जामिता आलस्य नहीं आता है, ये जीव में आ जाता है। स्वप्नांतम जागरितांतम चोभो येनानुपश्यति महांतम बेहुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। देखो कहते हैं ये जो दोनों है अवस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था, गई खा पी करके चले गए सपन में तो स्वप्नावस्था आ गई है ना, जागृत में फोटो खींच कर रखा है उसको देखता रहता है ना। लेकिन जो व्यक्ति सपनों में सो करके देखता है हाँ, लेकिन उस समय थोड़ी मालूम पड़ता है कि मैं सपनों को देख रहा हूं, मालूम पड़ता है क्या? हाँ, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जागृत में जैसे दिख रहा है संसार, ऐसा संसार सपनों में भी दिखता है, हो गया ना। लेकिन जब उठने के बाद मालूम पड़ता है मैं सपनों में गया था, तो जागृत की दृष्टि से उसको सपना बोलते हैं। नहीं तो ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ता कि मैं सपना सपना के लड्डू को खा रहा हूं, वास्तविक लड्डू को खा रहा हूं, हो गया कि नहीं। इसलिए ये जागृत में जो है ना ये भी ऐसा ही दिख रहा है। इसलिए जो भी दिखाई देगा दृश्य वो कैसा होगा, सपना ही होगा और क्या होगा, है ना। तो ये भी सपना है कि नहीं, ये भी तो सपना है, जागृत भी कैसा है। हाँ, इसको आप ये कह सकते हैं भाई वो छोटा सपना है, ये बड़ा सपना है, इतना कह सकते हैं। तो योग वशिष्ठ में कहते हैं जो है भगवान राम से सुनाते हैं वशिष्ठ जी कि दीर्घ स्वप्नम इमम सर्वम दीर्घम वा चित्त विभ्रमम दीर्घम वा मनोराज्यम विद्येनम रघुनंदनम। हे रोगनंदन, इसको भी तुम क्या समझ लो, दीर्घ सपना, सपना तो है लेकिन दीर्घ सपना है और क्या है ना। तो ऐसा है, सपनों में ही कभी कभी हो जाता है। हाँ, क्या मालूम पड़ता है भाई जो है हम इस घर में 50 साल से है, नहीं होता है क्या? भले वहां पर एक मिनट में देखा लेकिन अनुभव कैसा होता है, हम 50 साल से एक कमरे में है बना करके, जागृत में भी ऐसा हो रहा है ना। तो इसलिए जो है सुरेश राजा जी बोलते हैं ना, वो सपना सपना कहो इसको, सपनों क्या बोलेंगे, सपना सपना, ये विशेषण लगा दिया, सपना से पहले एक सपना को जोड़ दिया, सपना सपना हो गया। और ये कैसा है, ये जागृत सपना हो गया है ना। तो भले ही आप अपने आप को मान रहे हैं कि मैं जाग रहा हो, लेकिन सोए हो, तुम अभी भी सोए हो। कहां पर सोए हैं अभी, अनादि माया में, अनादि माया में, ये अनादि माया में सो करके ये जागृत सपनों को देख रहा है। और सपने जाता वहां पर भी माया है। देखो कहते हैं स्वप्न में जो कोई पदार्थ दिखता है ना, वो साक्षी चेतन से ही दिखेगा। और लौट आया जागृत में तो उसी चेतन से, तो ये स्वप्नावस्था स्वप्नावस्था के पदार्थ, जागृत अवस्था जागृत अवस्था के पदार्थ, ये आने जाने वाले है। और तुम जो देखने वाले हो, प्रकाशित करने वाले, तुम आने जाने वाले नहीं है। इसलिए आगे बोलते हैं, उभो ये न अनुपस्यति, ये न जिस साक्षी चेतन आत्मा के द्वारा ये सारा का सारा भास रहा है, भास रहा है। और तुम्हारे में भास रहा है, बस भासने पर भी इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये तुमको जो समस्या मालूम पड़ रही है ना, ये केवल अनुभूति मात्र है, वास्तविक समस्या तुम्हारे में नहीं है। भाई कोई बोलेगा, भाई शास्त्र की बात को हम कैसे मान लेंगे कि तुम्हारे में कोई समस्या नहीं है? जीवन भर समस्या ही समस्या है, बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक। वृद्धावस्था भाई खांसते खांसते जो है परेशान हो जाता व्यक्ति, तो समस्या है कि नहीं है? समस्या नहीं है, शास्त्र कहता है, अपितु समस्या की अनुभूति है। कैसे? जैसे मान लो कि ऐसा समझ लो कि भाई आपको बढ़िया भोजन खिला पिला दिया और किसी कमरे में सुला दिया, चारों तरफ खिड़की बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया, तो आप विचार कर लो भूख की समस्या है क्या? भूख की कोई समस्या नहीं है। तो भय की समस्या है क्या? चारों तरफ बंद है, देखो दरवाजा भी ठीक से लगा है, तो भय की भी समस्या नहीं है। लेकिन खा पी करके ओढ़ करके सो गए और सपना देखने लगे और घूमने जा रहे हैं जंगल में आप घूम रहे हैं मान लो, और दिग्भ्रमित हो गए आप, मार्ग से भ्रमित हो गए, मार्ग कहाँ है और ढूंढ रहे हैं मार्ग। और इस समय क्या है कि राजा के सिपाही पकड़ लिए चोर को ढूंढते ढूंढते, यही चोर है, और हाथ कड़ी बांध करके जो है आपको ले रहे हैं राजा के पास, और ऐसी जगह से ले रहे हैं जहां पर आपको पहले मान सम्मान मिला हो, ऐसे मोहल्ले में आपको पकड़ के ले रहे हैं और लोग चकित हो रहे हैं। मान लो ये क्या हो गए, ये ढोंगी है, देखो ये साधु है, हमारे सामने तो अपने को साधु समझ रहा था लेकिन अंदर अंदर देखो कितने चोरी कर रहा है। तो आपका चेहरा जो नीचे से जो है झुक रहा है अपमानित होकर के। अरे मान लो इस समय कोई साधु आ गया, साधु महात्मा आ गए, अरे व्यक्ति रो रहा है, भाई क्यों रो रहे हैं? देखो हम चोरी नहीं किया है फिर भी लोग पकड़ कर ले रहे हैं। तो साधु ने कहा क्या समस्या तुम्हें? कोई समस्या नहीं है, ये तो सपना है, सपना है बस, हाँ? ये सपना का खेल सपना में दिख रहा है, कहां पर दिख रहा? तुम्हारे में दिख रहा है, हाँ? और आपने कहा कि देखो यही समय है उपदेश करने का, हाँ? तुमको कोई समय नहीं मिला उपदेश करने के लिए कि इस समय आप उपदेश कर रहे हैं, और आपका सपना टूट गया मान लो उस समय टूट गया, तो आप विचार कर लो कि साधु की बात सच्ची निकलेगी कि आपकी अनुभूति सही होगी, है कि नहीं? साधु की बात सच्ची निकलेगी, आपकी जो अनुभूति हो रहा है ना वो झूठी निकलेगी, है ना? इसी प्रकार जो संत महापुरुष कह रहे हैं, शास्त्र का उपदेश करते हैं कि तुम्हारे में कोई समस्या नहीं, इसलिए भले ही आप अपने को अनुभव नहीं आता हो कि हमारा शुद्ध स्वरूप है, हमारे में किसी प्रकार का विकार नहीं है, ये सर्वभाव विकार शरीर का है, ऐसा अनुभव नहीं आने पर ही मान लेना चाहिए। हो गए, आज ये तर्क करते रहेंगे, देखो हम निर्विशेष कैसे होंगे भाई, हम सुखी दुखी से रहित कैसे होंगे, ऐसा आप तर्क करते रहेंगे तो तर्क करते ही करने में ही लग जाएगा, कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते देखो ये ना अनुपस्यति, जिस साक्षी चेतन से स्वप्न की अनुभूति हो रही है और जागृत की अनुभूति हो रही है वो है आत्मा, तुम्हारा स्वरूप। और तुम्हारा स्वरूप ये परिच्छिन्न नहीं है, तो सारी की सारी समस्या क्या होती है, परिच्छिन्नता में होती है ना। जैसे साधु महात्मा का कोई भी स्थान नहीं होता है, जो असली साधु महात्मा होते हैं भले ही ऊपर से बोले कि हमारा ये स्थान है ये स्थान है, लेकिन विचारवान जो साधु है उनका कोई स्थान नहीं होता है, ये पक्की बात है। हाँ, इसलिए घर छोड़ा है ना। तो साधु संत का जैसे कोई भी स्थान नहीं होता है वास्तविक, लेकिन थोड़ा सा भी किसी स्थान में ममत्व तो कर लिया तो अपना हो गया कि नहीं, अपना मान लिया। जब उतने स्थान को यदि अपना मान लिया तो उससे भिन्न क्या हो गया, पराया हो गया, हो गया कि नहीं पराया, है ना। यदि परिच्छिन्नता यदि बुद्धि ना हो तो उनका कौन सा स्थान होगा, कोई स्थान नहीं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड संत का होता है, ये दृष्टांत बता दिया। इसी प्रकार से जो विचारवान व्यक्ति होता है, जो अपने आप को अपरिच्छिन्न समझता है, उसमें कोई समस्या नहीं। देखो तो परिच्छिन्नता बुद्धि वाले संत में जैसी समस्या होती है, ओके कि नहीं, ममत्व तो हो गया तो फिर क्या होगा, तवत्व भी हो जाएगा, तव बुद्धि भी हो जाएगी, है ना। इसलिए यहां पर कहते हैं कि तुम्हारा सर्वज परिच्छिन्न नहीं है अपितु अपरिच्छिन्न है। यदि यहां पर बोलते महांतम कि आत्मा कैसा है, अपरिच्छिन्न है, सबसे बड़ा आत्मा है और उसी में सब भास रहा है। परिच्छिन्न जो चित्र है, जागृत का चित्र, सपना का चित्र, एक आत्मरूपी पर्दे में भास रहा है और वही जो आत्मा है, पर्दारूपी आत्मा है ना, वो अपरिच्छिन्न है, वही सत्ता दे रहा है और सबको प्रकाशित भी करता है, वही सबका अधिष्ठान है। इसलिए यहां पर बोलते हैं विभुम आत्मानम, विभु मतलब अधिष्ठान, विविधम भवन्ति अस्मात् इति विभु। विभु का अर्थ व्यापक भी होता है, लेकिन यहां पर व्यापक अर्थ नहीं है, अधिष्ठान है ना। इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में जो चेतन होता है वो अधिष्ठान भी होता है, जो ये सत्ता देता है वो प्रकाशित भी करता है। इसलिए ऐसे जो अपरिच्छिन्न अधिष्ठान आत्मा, यही अपना स्वरूप, इसको जिसने साक्षात्कार किया है ना, अहम अस्मि ब्रह्म रूप से जिसने अपरोक्ष साक्षात्कार किया, उनको किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की समस्या अपने जीवन में नहीं हो सकती है, जीते जी ही मुक्त हो जाता है। इसलिए आगे कहते हैं धीरह न सोचती, धीर पुरुष को ही ज्ञान होता है, अधीर पुरुष को तो परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकता है, श्रवण आदि का अधिकारी भी नहीं बन सकता है। इसलिए ज्ञान का फल ही बता दिया, आतंतिक दुख निवृत्ति, आतंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की नित्य अनुभूति, इसी का नाम क्या है मोक्ष, इसी का नाम क्या है परम पुरुषार्थ, इसी के लिए ही मनुष्य जन्म मिलता है। आगे का विचार कल करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।